जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जन रंजन यशोदानन्दन व्रज जन रंजन यमुनातीरावन चारी यमुनातीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Radha Giridhare Radha Giridhare Radha Jai Jagannath Jai Jagannath Jai Baladeva Jai Subhadra Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Nitai Gaurariba, Riba. Hari bol tai gauram jaya jaya prabhupada 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 ki jai Om namo bhagavate vasudevaya Om namo bhagavate vasudevaya Om namo bhagavate vasudevaya Narayanam namaskritya Naram chaiva narottamam Devim sarasvatim vyasam Tato jayamudhiret Nashta prayesha badreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishchiki Srimad Bhagavatam Skanda 10 Adhyay 11 Shloka Sankhya 2 Bhumyam nipatito tatra dadrushu yamalarjuno babrahmuhu तत् अविज्ञाया लक्ष्यम् पठनकारणम्। भूम्यान्निपतितो तत्र तद्दृश्यमनार्जुनो तद्दृश्यमनार्जुनो बभ्रुंस्तद्विज्ञाय बभ्रुंस्तद्विज्ञाय लक्ष्यं पतनकारणम् लक्ष्यं पतनकारणम् भूम्यां निपतितो तत्र ददृश्युर्यमलार्जुनो ददृश्युर्यमलार्जुनो बभ्रुमस्तद्विज्ञाय बभ्रुमस्तद्विज्ञाय लक्ष्यं पतनकारणम्। तत्र भूम्याम भूमि पर निपतितौ गिरे हुए तत्र वहां तद्दृश्यु सबों ने देखा यमलार्जुनो अर्जुन वृक्ष के झड़े को
अर्जुन वृक्ष की झड़े को
बब ब्रह्महु मोहग्रस्त हो गए। तत् वह अविज्ञाया पता न लग सका लक्ष्यम यह देखते हुए भी कि वृक्ष गिरे हैं पतन कारणम गिरने का कारण अनुवाद और तात्पर्य ज्वाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद वह उन सबों ने यमलार्जुन वृक्ष को जमीन पर गिरे हुए तो देखा किंतु वे विमोहित थे क्योंकि वे आंखों के सामने वृक्षों को गिरे हुए तो देख रहे थे किंतु उनके गिरने के कारण का पता नहीं लग पा रहे थे। तात्पर्य कभी सभी परिस्थितियों पर विचार करने पर प्रश्न उठता है कि क्या यह कृष्ण की करतूत है। वे तो उसी स्थान पर खड़े थे और उनके साथियों ने कह सुनाया कि यह सब कुछ कृष्ण ने किया था। क्या सचमुच कृष्ण ने ऐसे किया था? क्या वह मनगढ़ंत कहानी थी? विमोहित होने का कारण यही था। ओम ज्ञात वृंदस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामहं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन्नैष्टमांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणलिताशिविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धौ दीनबन्धौ जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। आज से ये नया अध्याय का शुरुआत हो रहा है। पिछले अध्याय में यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार, नलकुएर मणिगिरी का उद्धार के विषय में श्रवण किया। अभी ये अध्याय की विशेषता ये है, इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के जो बाल लीलाएं जिनका वर्णन विस्तार रूप में पिछले अध्याय में नहीं हो पाया है, उसका कुछ अंशों को प्रकाशित किया गया है। यानी साधारण लीलाएं, विशेष तो ऐसी भगवान के हरेक लीला विशेष होता है, लेकिन इन जनरल भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ, गोपों के साथ किस प्रकार व्यवहार करते थे, खास करके गोकुल में, उसका वर्णन हमको यह अध्याय में प्राप्त होता है। साथ साथ में बड़ा प्रसिद्ध लीला है कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता के प्रति आकृष्ट होके वो फल बेचने वाली कृष्ण को सारा फल अर्पण कर दिया और कृष्ण ने उनकी टोकरी में पूरा गहने वज्र वैडूर्यों से भर दिया का वर्णन आता है। कृष्ण की रक्षा हेतु नंद उपनंद इत्यादि मीटिंग का वर्णन है इस अध्याय में, जिसके द्वारा वो निर्णय किए अभी हम महावन में नहीं रहेंगे, बृहद वन में नहीं रहेंगे, हम अभी जाएंगे वृंदावन। वृंदावन में खास करके नंदीश्वर है, उधर हम अपना घर बसाएंगे नंदग्राम में। तो उधर सब लोग किस प्रकार कृष्ण को साथ में लेके, गल बलराम जी को साथ में लेके, सारा पूरा कृष्ण के लिए, कृष्ण के हेतु, कृष्ण की संरक्षण के हेतु पूरा गांव-गांव पूरा शिफ्ट हो गया गोकुल से, उसका पूरा वर्णन आता है। उसके बाद दो असुरों का वर्णन, एक वत्सासुर दूसरा है बकासुर, इन दो असुरों का वध हमको इस अध्याय में प्राप्त होता है। तो ये अध्याय का विशेषता इसलिए है क्योंकि अभी नंद महाराज और जितने भी गोप लोग उधर उपस्थित हुए थे, यमलार्जुन वृक्ष जब गिरा उस समय वो जैसे आए तो आश्चर्यचकित हो गए भगवान श्री कृष्ण का ये कार्य को देख के। पिछली बार भी अनेकों अध्यायों में अनेकों प्रसंगों में भक्तों का कृष्ण का कार्य को देख के आश्चर्य का अनुभव करना, जो सात गौण रसों में एक प्रकार का रस है, आश्चर्य रस, उसके विषय में कम से कम दो क्लास जब मेरा मौका आया था आपको बताया गया था भक्ति रसामृत सिंधु से कि आश्चर्य रस दो प्रकार का अनुभव हो सकता है, एक है प्रत्यक्ष, दूसरा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब सामने जो कृष्ण की जो लीलाएं घट रही हैं उन लीलाओं को दर्शन करके आश्चर्य को अनुभव करना। अप्रत्यक्ष मतलब कृष्ण का लीला कहीं घटी है, उस घटी लीलाओं को श्रवण करके, किसी के माध्यम से श्रवण करके सुन के आश्चर्यचकित हो जाना। जैसे भागवत के प्रसंग में जब सुखदेव गोस्वामी कृष्ण लीलाओं को वर्णन कर रहे थे तो समय जैसे नरकासुर का लीला, नरकासुर को कैसे वध किया भगवान ने, उनका वर्णन किया, तो ये सुन के परिस्थिति महाराज आश्चर्यचकित हो गए। तो उन्होंने प्रत्यक्ष लीला को देखा नहीं बल्कि खाली लीला का श्रवण करने मात्र से वो आश्चर्यचकित हो गए। तो आश्चर्य का अनुभूति के विषय में श्री रूप गोस्वामी पर लिखते हैं पत्र सामन सिंधु में, वो सुरूप सार रूप में लिखते हैं लेकिन उसके विस्तार में श्री विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर वर्णन करते हैं। भगवान की कार्यकलाप पर प्रत्येक कार्यकलाप आश्चर्यमय है। यह आश्चर्य का आधार क्या है? प्रेम। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जिनका आपका कोई संबंध नहीं है, वो कितना भी बड़ा अद्भुत कार्य करे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आपको किसी से प्रेम है, छोटा सा कार्य भी करता है बड़ा अद्भुत आश्चर्य का अनुभव होता है। जैसे मान लीजिए माता पिता है, जब बच्चे थोड़ा सा बड़े होते हैं और चलने लगते हैं, दो तीन कदम चलने लगे थोड़ा आश्चर्य लगता है, वहाँ बड़े आनंद लेते हैं, क्या कितना देखो यार बच्चा चलने लगा। वैसे इतने सारे बच्चे पैदा हो रहे हैं, चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है लेकिन वो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रेम उनके अंदर उनमें नहीं है, अपने बच्चे में है, इसलिए उसका प्रत्येक कार्य आश्चर्यजनक लगता है। तो ये आश्चर्य का अनुभव होना ये प्रेम का एक लक्षण है, प्रेम के ऊपर आधारित है। तो ये प्रेम में भी आश्चर्य का अनुभूतियाँ अलग अलग प्रकार है, अलग अलग घटनाओं में अलग अलग प्रकार है। कभी कभी भगवान अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड को प्रदर्शित करते हैं, जब रूप में ब्रह्मांड को एक बार प्रदर्शित किया तो उसका कोई कारण नहीं था, तो दूसरा एक बार ब्रह्मांड को प्रकाशित किया उसके पीछे कारण था, दो बार भगवान ने अपना मुख में ब्रह्मांड को प्रकाशित किया। पहली बार जैसे त्रिनावर्त की लीला समाप्त होने के बाद भगवान ने मुख में लीला प्रकाशित किया, ब्रह्मांड को प्रकाशित किया, यशोदा में कृष्ण को दूध पिला रहे थे और कृष्ण ने क्या किया, तो यौनी को क्या बोलेंगे, जमाई लगा, ऐसा किया तो तुरंत यशोदा में पूरा ब्रह्मांड को देखी, आश्चर्यचकित हो गए। तो कृष्ण ने इधर ब्रह्मांड क्यों दिखाया, उसका कोई पीछे कोई कारण नहीं था, देयर इज नो रीजन फॉर इट। कभी कभी ऐसा कुछ कार्य होता है भगवान करते हैं, उसके पीछे कोई कारण नहीं रहता है। अभी दूसरी बार यशोदा मैंने पूछा, देखो मुंह खोलो, मट्टी खाया के दिखाओ, बलराम ने कंप्लेंट किया, तो भगवान ने क्या किया, मुंह खोला, तो उसके पीछे कुछ कारण था। क्या कारण था? यशोदा ने बोला मुंह खोलो, और कृष्ण को साबित करना था कि मैंने मिट्टी नहीं खाया है। तो कभी कभी ऐसा कार्य होता है, ऐसी लीला होता है जिसके पीछे कोई कारण नहीं रहता है, लेकिन कोई भी जब लीला होता है उसके पीछे कारण को ढूंढना ये मन का स्वभाव है, ऐसा क्यों हुआ। अभी इधर नंद महाराज और जितने भी लोग बहुत भयानक आवाज सुने, ये दूसरा श्लोक है, पहला श्लोक का तात्पर्य नहीं है, इससे पहला श्लोक में वर्णन हुआ है। श्री सुखवाच सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि गोपा नंदादय श्रुत्वा, गोपा नंदादय, गोपगण खास करके नंद इत्यादि, उधर नंद महाराज के और भाईजन भी, भाई लोग भी थे, श्रुत्वा सुने, क्या सुने थे, द्रुम्यो पततो रवम, रवम शब्द मतलब शब्द है, रवम शब्द तभी इस्तेमाल किया जाता है जब उसका आवाज जो है बहुत भयानक हो, इसलिए प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं रवम शब्द का अर्थ द हाई साउंड ए टेरिबल एज ए थंडरबोल्ट, जैसे वज्र का गिरने पर जब एक भयानक सा आवाज आता है, जैसे बिजली चमकता है, साथ साथ में गरजता है बादल भी। तो बादलों की गरज जितना भयानक होता है उस प्रकार का आवाज आया, क्योंकि अर्जुन वृक्ष जो है वो कभी छोटे नहीं होते, बहुत बड़े होते हैं। और वैसे ही हजारों साल से दोनों यमलार्जुन वृक्ष थे उधर, जैसे इतने बड़े वृक्ष एकदम धार करके गिर पड़ा तो उनको बहुत आवाज आया, शुद्ध आई। आवाज सुनते ही अपने अपने काम में व्यस्त थे लोग, क्या हुआ, तत्र तत्राजग्मुः कुरुश्रेष्ठः, तत्राजग्मुः कुरुश्रेष्ठः। तो सब लोग भागते भागते उस जगह पे आए चाहे दो वृक्ष गिर पड़ा। तो निर्घात भय संकितः, जैसे वो पहुंचे उधर तो क्यों पहुंचे, उतना जल्दबाजी में क्यों पहुंचे, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि कुछ भयानक से परिस्थिति आया है। भय संकिता, निर्घात भय संकिता, विद फॉलिंग थंडर बोल्ट्स। तो डर के मारे भाग के आए, क्या हुआ क्या हुआ, कोई बड़ा आवाज आता है, सब लोग स्वाभाविक तरीके से जाते ही है। तो भी अपने घर में हुआ, नंद महाराज चांगन में हुआ, सारे गोपगण सब लोग उधर पहुंचे। और जैसे पहुंचे तो इस श्लोक में उनका आश्चर्य का वर्णन हो रहा है। दो श्लोकों में या दूसरा और तीसरा श्लोक में नंद गोप और इत्यादि ये जो कृष्ण का लीला का प्रत्यक्ष दर्शन देख करके किस प्रकार आश्चर्य को अनुभव किया उसका वर्णन है। ये जो दो श्लोकों का विशेषता ये है कि भी नंद महाराज और जितने भी गोपगण मीटिंग करके गोकुल से अभी कहाँ जाने वाले हैं, नंदगांव। अभी नंदगांव में जाने के बाद अभी कृष्ण ने जो असुरों को वध किया वो उनका प्रत्यक्ष दर्शन या आश्चर्यमत्तक जो लीलाएं हैं उनका सीधा दर्शन गोपों ने गोपियों ने नहीं किया था, केवल ग्वाल बालों ने किया। तो इसलिए एक तरीके से देखा जाए जो प्रत्यक्ष लीला का दर्शन करने से उत्पन्न हुआ जो आश्चर्य है उन लीलाओं में उस प्रकार का जो प्रत्यक्ष आश्चर्य है उस पर ये आखिरी लीला है। बाकी जितने भी अन्य असुरों को वध करने की ऐश्वर्य जो लीला भगवान ने प्रकाशित किया है उन सारे लीलाएं भगवान का जो भी है वो गोपों ने गोपियों ने अप्रत्यक्ष रूप में उस आश्चर्य को अनुभव किया। यानी ग्वाल बाल रोज जो भी कृष्ण करते थे वो सब आके घर में आके सुना देते, कृष्ण ने आज ऐसा किया ऐसा किया ऐसा है क्या, सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। तो चाहे प्रत्यक्ष हो अप्रत्यक्ष हो भगवान की लीला जो है हमेशा आश्चर्यात्मक होता है, आश्चर्यजनक होता है, इज ऑलवेज एस्टॉनिशिंग। हाँ, भगवान की प्रत्येक कार्य जो है वो आश्चर्यात्मक है। जैसे भगवान की जो सृष्टि भी है, ये जो करते हैं सृष्टि करते हैं वो भी आश्चर्य में है। अगर देखेंगे एक एक कार्य इस जगत में होता है वो भी कृष्ण के आदेश के अनुसार होता है, इट इज ऑल्सो वेरी एस्टॉनिशिंग। अभी ये इस प्रकार का ये जो अद्भुत रस को आस्वादन कर रहे नंद महाराज, ये अद्भुत रस का आस्वादन का कारण क्या था, कारण ये था कि उनको कारण नहीं पता लग रहा था, यही ये आश्चर्य था। पहले कुछ भी लीलाएं होती थी उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण मिलता था, अच्छा इस प्रकार इसलिए हुआ होगा इसलिए हुआ होगा, लेकिन उनको कारण सूझ ही नहीं रहा था। वैसे तो दो बड़े वृक्ष है वो गिरा तो फिर कम से कम थोड़ा तूफान तो आया हुआ रहना चाहिए, कुछ तो हुआ रहना चाहिए, तो वो भी कुछ नहीं आया, कोई ऐसा कोई बादल छाया नहीं है, बड़ा सा तूफान आंधी नहीं आया, कुछ नहीं आया, वैसे कैसे गिर पड़ा उनका ये सोचना था। तो ऐसे गिरा होगा तो कोई गिरा है वह तभी गिरा होगा, तो आजू बाजू में देखे कोई दिखाई नहीं पड़ा उनको, खाली कृष्ण दिखाई पड़ रहे थे। तो मन में कोने में कहीं ऐसा एक कृष्ण तो नहीं किया ना, ऐसा माइंड में आया, नहीं एक ऐसे कर सकता है तो बच्चा है। तो दोनों बातें आ रही थी, क्योंकि अगर दो वृक्ष गिर पड़े, अगर उधर केवल वही बच्चा खड़ा है नजदीक में और कोई नजदीक में है नहीं, तो स्वाभाविक तरीके से मन सोचेगा कि इसकी वजह से हुआ रहेगा, तो इसकी वजह से हुआ रहेगा तो सोचे तुरंत लेने सोचा नहीं नहीं इसकी वजह से ये थोड़ा बच्चा ये थोड़ी ना किया होगा, अगर ये नहीं किया तो कौन किया, फिर कौन गिराया इसको। तो इस प्रकार का आश्चर्य को अनुभव कर रहे थे। इसलिए कहा गया है भूम्याम निपत तत्र ददर्शु यमलार्जुनो, जो भूमि पे गिरा पड़ा ये जो यमलार्जुन वृक्ष को देख के वो भ्रमुस तद अविज्ञाया, इनका भ्रमुस, इनका भ्रम यानी इनका आश्चर्य का कारण क्या था? तद अविज्ञाया, अविज्ञाया, अविज्ञाया करते हैं कि नहीं जान पाना, नहीं पता कर पाना। लक्षणम पतन कारणम, किसका क्या क्या चीज की जानकारी नहीं थी? पतन कारणम, पतन कारण लक्ष्यम पतन कारणम, लक्ष्यम क्यों गिरा, गिरने का लक्षण तो होना चाहिए कुछ ना। हर चीज जो है लक्षणों के द्वारा ही पहचाना जा सकता है, उनको सबूत नहीं मिल रहा था, हम कैसे पता लगे किसने गिरा है, क्यों गिरा है, कैसे गिरा है, कोई भी चीज पता नहीं लग रहा था। तो श्री प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, है कृष्ण एक्चुअली डन दिस, क्या कृष्ण सच में ऐसा किया है? तो ये बात इसलिए बात हो रहा था कि आगे एक दो श्लोकों के बाद, यानी तीसरा श्लोक के बाद चौथे श्लोक में से ग्वाल बाल ये सब आके कहते हैं, हमने देखा कृष्ण ने किया, हमने देखा कृष्ण ने किया। लेकिन जब ग्वाल बालों की ओर देखे, वो बोलने से पहले नंद महाराज वगैरह सब समझ गए कि ये ग्वाल बाल अपनी आंखों से इशारा कर रहे थे। श्रीपाद वल्लभाचार्य कहते हैं अपनी आंखों से इशारा कर रहे थे, ये किया, हमने नहीं किया है। जैसे बच्चे लोगों के पास होता है ना, मान लो कि गड़बड़ होता है तो तुरंत माता पिता जैसे पहुंचते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, कुछ बोलेंगे नहीं पहले, इसने किया, हमने नहीं किया। तुरंत जो है ब्लेम दूसरे को डाल दो, भले खुद किया हो, खुद जिम्मेदार भी क्यों ना हो। तो ये लोग सोचते, अच्छा ग्वाल बालों को देख रहे थे, ग्वाल बालों की आंख तो कृष्ण के ऊपर था, वो कृष्ण को देखते हैं, कृष्ण तो शांति से बैठे उधर, वो उसका हाथ बंधे हुए, वोकल से बंधे हुए कृष्ण है। अभी और आश्चर्यचकित हो गया, अभी वो सोचे नहीं कृष्ण नहीं हो सकता है, लेकिन ग्वाल बाल तो इनके ऊपर इंगित कर रहे हैं। अभी बाद में वापस तीसरे श्लोक में, कल के श्लोक में भी यही आश्चर्य का और आगे विस्तृत वर्णन है। बाद में ग्वाल बाल बताते हैं, नहीं नहीं हमने देखा इसी ने किया है, इसी वे जो ही है कृष्ण, हमने देखा कि ये दो वृक्षों के बीच में आया और धक्का दिया तो दोनों वृक्ष नीचे गिर पड़ा। लेकिन इतना सुनने के बाद भी इन लोगों को ऐसा नहीं लगा, नहीं नहीं कृष्ण के द्वारा नहीं हो सकता है। तो ये प्रेम का स्वभाव है, प्रेम ऐसा चीज है, भले ही आपका पुत्र आप जिनसे प्रेम करते कितना भी बड़ा कार्य करे, विश्वास नहीं दिला था इसी ने किया होगा करके। जैसे पिछली बार भी बहुत बार जब भी सर इन श्लोकों के ऊपर जब चर्चा हमने किया है उस समय बताया था, खास करके ये जो लीलाएं हैं, खास करके जो पौगंड लीला है, कौमार अवस्था तक जो लीलाएं, पांच साल तक क्या लीलाएं हैं, उनमें से सार रूप में बताया जाए यही है, हमेशा भगवान की ऐश्वर्य शक्ति जो है भगवान की माधुर्य मधुरता को परास्त करने के लिए आती है। लेकिन जितना ऐश्वर्य शक्ति भगवान की मधुरिमा को परास्त करने के लिए आती है, फिर भी भगवान का जो मधुरिमा जो है वही हमेशा जीतती है। यशोदामय नंद महाराज का जो वात्सल्य प्रेम है उसको परीक्षा लेने के लिए बार बार आती है। जब भी परीक्षा होती है, ऐश्वर्य शक्ति परीक्षा लेती है, हमेशा यशोदामय नंद महाराज का वात्सल्य प्रेम जो है वही सफल हो जाता है। यानी दूसरे शब्दों में भगवान की जो ऐश्वर्यमय लीलाएं जो दिखाई पड़ रहा है इस गोकुल में, का केवल एक ही कार्य है, वो है ये विशुद्ध वात्सल्य प्रेम रस का पोषण करना, उनकी महिमा का जो गुणगान करना ही उनका एकमात्र कार्य है। उसमें अद्भुत रस का आश्रय बार बार लिया गया है। इसलिए हम देखते हैं कि जितने भी लीलाएं हुए भगवान की, खास करके ये जो पहला है पूतना का हुआ, बाद में पूतना के बाद हुआ शकटासुर का, शकटासुर के बाद हुआ त्रिनावर्त का, और त्रिनावर्त के बाद हुआ यमलार्जुन। ये चारों लीलाओं में ये अद्भुत रस है, क्योंकि ये अद्भुत रस जो है, वैसे तो देखा जाए भगवान का ऐश्वर्य अद्भुत है, लेकिन उससे अद्भुत बात यह है कि नंद महाराज यशोदामय का कृष्ण के प्रति प्रेम, वो और अद्भुत है। तो भगवान का ये जो ऐश्वर्यमय लीला भले ही अद्भुत है, लेकिन फिर भी उससे अद्भुत बात यह है, इतना अद्भुत चीज को भगवान प्रकाशित करने के बाद भी यशोदा माई का वात्सल्य जो है वो कभी कम नहीं हुआ, ये आश्चर्य की बात है। ये सारे जितने भी लीला अभी तक हुआ है ये हमको ये बोध मिलता है या ये शिक्षा हमको प्राप्त होता है। अभी आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार नंद महाराज इत्यादि सब लोग मीटिंग करते हैं, मीटिंग करके फिर आगे सब शिफ्ट होते हैं गोकुल से। अभी आश्चर्य की बात यह है कि एक बच्चे का संरक्षण के लिए पूरा गांव गांव पूरा शिफ्ट हो गया है। हाँ, ऐसा कभी इतिहास में कभी नहीं हुआ है। ठीक है, परिवार शिफ्ट हुआ या आजू बाजू वाले शिफ्ट हुए, मित्र लोग गए, अलग बात है। खाली एक बच्चे का संरक्षण करने के लिए पूरा गांव ही शिफ्ट हो गया, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सभी सभी लोगों को शिक्षा ग्रहण करने वाली बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए हमको कुछ भी करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर शिफ्ट होना पड़े शिफ्ट भी होना चाहिए श्री कृष्ण के संरक्षण के लिए। तो ये सब बातें हैं इसमें। वैसे तो परसों भी क्लास किया था, अभी भी आज भी क्लास में ही श्लोक के अनुसार, इससे ज्यादा मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। कोई प्रश्न है तो पूछिए, एनी क्वेश्चन प्लीज। आप नंद महाराज इत्यादि सब लोग जो है कृष्ण की संरक्षण के लिए एक जगह से दूसरा जगह गए। उधर जाने का कारण ये था क्योंकि उनको मालूम था एक नंदीश्वर है, उधर कोई असुर नहीं आ सकता। हाँ, उनको निश्चित रूप में मालूम था इधर असुर आ पा रहे, हमारे गांव में आके डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो उधर कोई असुर आने का कोई संभावना नहीं, क्योंकि उधर एक शाप था असुरों को, कोई भी उस पहाड़ के ऊपर आएगा तो उसका सर चूर चूर हो जाएगा। कोई ऋषि थे, कौन तपस्या कर रहे थे उधर, मैं भूल गया कौन। हाँ, शांडिल्य ऋषि, शांडिल्य ऋषि उस नंदीश्वर के ऊपर तपस्या कर रहे थे, तब उनको उन्होंने असुरों को शाप दिया, वो आके बार बार डिस्टर्ब कर रहे थे, तो उन्होंने शाप दिया कि कोई भी आएगा तो इधर उनका सर चूर चूर हो जाएगा, ऐसा कुछ शाप। तो इन नंद महाराज सब इनको मालूम था इसलिए उधर शिफ्ट हुए। हाँ, नहीं तो उधर जाने का कुछ मतलब ही नहीं था, क्योंकि पहाड़ के ऊपर थोड़ी ना रहने जाएंगे कोई। प्लेन है, सब कुछ है, फर्स्ट क्लास है, महल है, सब कुछ है, तो पहाड़ के ऊपर क्यों जाएंगे। क्योंकि ये अभी भी आश्चर्य की बात है, अभी भी नंदगांव जो बसा है ना पहाड़ के ऊपर ही बसा है, बाहर कुछ नहीं है, एक्सपेंशन नहीं हुआ है, जो भी है उसी उधर ही उसी एरिया में उधर ही रहते हैं। आश्चर्य की बात है, लेकिन इतने साल होने के बाद भी लाइक दैट। दूसरे जगह पे नंद महाराज चेंज हाउ मेनी प्लेसेस, पहले गोकुल में है नंद महाराज, उसके बाद नंद महाराज जो है वो नंदगांव में आए। तो अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग चीजें मिलता है, कभी वो काम्यवन में थे, कभी इधर थे, कभी उधर थे, ऐसा मिलता है। क्योंकि हमको कोई स्पष्ट कोई चीज प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि कल्प भेद है, और दूसरी बात यह है कि अलग अलग आचार्यों का अलग अलग प्रकार का अनुभूतियां हैं, इसकी वजह से हम कोई ठीक निर्णय नहीं कर सकते। लेकिन भागवत के अनुसार तो दो जगह है, लेकिन अन्य बहुत सारे ग्रंथ है, कहीं ऐसा वर्णन है कि कभी वो कुछ समय के जैसे झोपड़पट्टी में रहते थे, कई महल में रहते थे। खास करके जब वृंदावन से निकलेंगे तो चतिकरा आता है ना, चतिकरा, उधर कुछ समय के लिए रुके थे। कैसे रुके थे, सारे जितने भी बैल गाड़ियां जो लेके आए थे उन सबको एक हाफ राउंड बनाए थे, और जो उधर एरिया बनता है उधर कृष्ण को रख के सारा गांव उधर कुछ समय के लिए बसा था। ऐसे कुछ लोगों का कहना है कि ये जो नंदगांव से जब सॉरी गोकुल से नंदगांव गए थे, वो बीच बीच में अनेकों जगह रुके थे।
तो एक जगह है चतिकरा जहां वो लोग रुके थे। तो कभी कुछ लोग कहते हैं कुछ समय के लिए कामेवन में भी थे, लेकिन ऐसा कोई स्पष्ट निर्धारित कोई चीज नहीं है। जो भी शास्त्रों में है उन सबको सत्य करके मान के चलना चाहिए। देयर इज नो क्रोनोलॉजी। पुनर्विश्व आपको कुछ मालूम है क्रोनोलॉजी? हाँ, कुछ ऐसा कोई स्पेसिफिक चीज नहीं। हाँ हाँ, यही मेन चीज है। क्योंकि नंद महाराज वो कौन थे, वो ऐसे देखा जाए एक वैश्य है। वैश्य में भी वो बहुत हाई क्लास वैश्य नहीं है, एकदम लोअर क्लास वैश्य है, गाय बैल को देखभाल करने वाले हैं। तो उनका कोई हिसाब किताब नहीं रहता है, दे आर लाइक नोमैड। उनका कोई परमानेंट रेसिडेंस नहीं रहता है। गायों को जैसे ठीक लगे उस हिसाब से अपना घर बना लेते हैं। कभी महल में रहते हैं, कभी झोड़ी में रहते हैं, कभी टेंट में रहते हैं, कभी खुला ऐसे कुछ समय के लिए 4-5 दिन के लिए रहने का बना देते हैं। तो उनका कल्चर ही टोटली अलग है इतना से। लेकिन मेन तो यही है। हाँ बराबर है, नंदगांव तो मेन है। ठीक है, हरे कृष्ण। विंत्राश्विन भागवतम की श्री प्रभुपाद की जय।